ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम भगवत गीता से चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता का श्लोक आपको मैसेज किया होगा, किसको किसको मैसेज मिला? श्लोक नंबर और रेयरली। तो भगवत गीता की जो चर्चा है अभी इस कार्यक्रम में, भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है जिसका शीर्षक है गीता का सार, तो उसमें चर्चा होगी। तो श्लोक नंबर 56 और 57 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं श्लोक पढ़ूंगा उसका अनुवाद और फिर उसके बारे में हम थोड़ा विशेष वर्णन करेंगे। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध सितधीर मणि रुच्यते। श्लोक संख्या 56 दूसरा अध्याय, उसका अनुवाद इस प्रकार से है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हैं, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इसका तात्पर्य है, मुनि शब्द का अर्थ है वो जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करें। आवाज क्लियर है आप सबको या बहुत गूंज रही है?
इको कम कर सकते हैं।
98
वो कर रहे हैं, इको थोड़ा कम। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। अभी ठीक है आवाज? हरे कृष्णा
कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या 56 है, उसका तात्पर्य इस प्रकार से है। मुनि शब्द का अर्थ है वो जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो, पहले ठीक था, तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृष्टिर्यश शमतम न भिन्नम। किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यह उल्लेख किया है वो सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वो प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वो भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना वाली व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वो ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज कौन कौन पहली बार आया है इस कार्यक्रम में? एक दो तीन चार पांच। तो भगवत गीता एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके बारे में हर जो व्यक्ति है वो परिचित है। इस अध्याय में कई दिनों से हम अलग अलग चीजों को सीखते आए हैं और जब भगवान के अर्जुन शरणागत होता है, क्योंकि भगवान को जानने के लिए सबसे प्रथम योग्यता है श्रद्धा। क्या योग्यता है? श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे कैल सदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो फेथ की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि श्रद्धा से ही हम कोई चीज सीखना शुरू करते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा फेथ होता है टीचर के ऊपर। ये नहीं हम टीचर को कहते कि आप दिखाओ अपनी डिग्री सर्टिफिकेट दिखाओ तब मैं आपके क्लास में बैठूंगा या बैठूंगी, ऐसे कहते हैं आप नहीं। हमें फेथ है, श्रद्धा से ही एजुकेशन या शिक्षा की शुरुआत होती है। तो उसी प्रकार से जब अर्जुन के जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां आई, इतनी सारी समस्याएं आई, तो उन समस्याओं को अर्जुन ने किसके सामने प्रस्तुत किया? कृष्ण के सामने। और कृष्ण बहुत चतुर है। कृष्ण क्या है? चतुर है। तो कृष्ण के जैसे कोई योग्य व्यक्ति नहीं था अर्जुन के सामने। तो हमें भी अपने जीवन में भगवान के समान जो योग्य पुरुष है, योग्य व्यक्ति है, उसको ढूंढना चाहिए और उनसे भगवान की शिक्षा स्वीकार करनी चाहिए या सीखनी चाहिए। तो भगवान के समान व्यक्ति होने का मतलब क्या है? कि जो व्यक्ति भगवान की शिक्षाओं को यथा रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है वो भगवान का प्रतिनिधि है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि गुरु का मतलब क्या है? कि जो पोस्टमैन का कार्य करे। किसका कार्य करे? पोस्टमैन का। अभी तो पोस्टमैन दिखाई नहीं देते और वो क्या है उसको कहते हैं, लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स भी नहीं दिखाई देते अभी तो, ईमेल, व्हाट्सएप और क्या क्या आ गए हैं, इजी कम्युनिकेशन हो गया है। तो जो लेटर बॉक्स में कोई व्यक्ति लेटर डालता है और वो ऑथराइज लेटर बॉक्स है और पोस्टमैन वहां से यहाँ से कैरी करके उस स्थान तक पहुंचाता है जिस व्यक्ति का वो लेटर है, तो वो लेटर पोस्टमैन बीच में खोल के नहीं देखता और कुछ ऐड भी नहीं करता या कोई चीज निकालता नहीं है। जिस व्यक्ति ने भेजा है, जिस व्यक्ति के लिए, उसको यथारूप उसके हाथ में पहुंचाता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि एक गुरु का या एक भक्त का कार्य है जो भगवान का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, उसको भी भगवान की जो शिक्षा है वो क्या करना है, लोगों के हाथ में यथारूप पहुंचाना है। तो गुरु का या भक्त का काम यही है कि भगवान की शिक्षाओं को लेता है और लोगों के हाथों में यथारूप पहुंचाता है। तो ये पोस्टमैन का काम जो उचित रूप से करता है वो वास्तव में भगवान का प्रतिनिधि है। इसी कारण से अर्जुन का तो सौभाग्य था, अर्जुन को गुरु के रूप में साक्षात कौन प्राप्त हुए थे, कृष्ण। तो कृष्ण प्राप्त हुए थे। कोई कह सकता है कि हमारे जीवन में कृष्ण ही चाहिए, कहते मैं भगवान से सीखूंगा, बीच में किसी से नहीं, तो ऐसे नहीं हो सकता। भगवान अपनी जो शिक्षा है अपने ग्रंथ भगवत गीता के माध्यम में देते हैं। जैसे भगवान के अलग अलग अवतार आते हैं तो अलग अलग चीज वो छोड़कर चले जाते हैं जीवों के कल्याण के लिए। जैसे द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण मतलब 5000 साल पूर्व अवतरित हुए, और फिर जब अप्रकट हुए कलयुग की शुरुआत में महाभारत आदि युद्ध के बाद, तो भगवान अपने पीछे क्या छोड़ के गए, भगवत गीता। क्या छोड़ के गए, भगवत गीता। इतना इंपॉर्टेंट वस्तु भगवान छोड़ के गए। और उसका हेतु क्या था, गोल क्या था इस भगवत गीता का, कि कोई व्यक्ति भगवान की इन शिक्षाओं को सरलता से समझे और केवल 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 भगवान कृष्ण के चरणों में शरणागत हो जाए। ये गीता का सार है। गीता का सार क्या है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान जानते हैं कि हम सब बहुत डरपोक हैं। क्या है, डरपोक हैं। इसलिए भगवान जाते जाते बोल रहे हैं, जब घर में बहुत सारी बातें कोई आता है तो करता है और बहुत सारे विषयों पर बोलता है, लेकिन निकलते निकलते कोई बात बोलता है तो ज्यादा क्या रहती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो वैसे ही भगवद गीता का बहुत सारा उपदेश उन्होंने अलग अलग अध्याय में दिया। अभी जब अर्जुन को गीता में बाय बाय करना चाह रहे थे कृष्णा, तो लास्ट वर्ड क्या बोल के गए, सर्वधर्मान परित्यज। तो कोई कह सकता है भगवान ने वहां किसी धर्म के बारे में नहीं बोला कि हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, नहीं। भगवान कहते हैं जो भौतिक धर्म है, धर्म का यह मतलब है कि जो भौतिक चीजों की हमने शरण ग्रहण की है, उन चीजों को त्याग करके भगवान कहते किसकी शरण ग्रहण करो, माम एकम। उन्होंने ये भी नहीं कहा माँ मेरी या किसी और के बारे में नहीं बोला, इवन कोई देव देवी देवता के बारे में भी भगवान ने नहीं कहा। या आज तक ना भूतों ना भविष्यति ना हिस्ट्री में ऐसे हुआ है कि किसी देवी देवता ने ये बोला है कि सारे धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण ग्रहण करो, ऐसा सुना है आपने, नहीं। और भगवान ने बोला तो उसके लिए किसी ने चैलेंज भी नहीं किया, किया है किसी ने चैलेंज, नहीं किया। तो हमें ये जानना चाहिए कि लाइफ में किसी की शरणागति स्वीकार करनी है तो शरण देने वाले कृष्ण है केवल। इसलिए जब पार्वती ने शिव जी से पूछा, पार्वती देवी हमेशा पूछती रहती है, उसको प्रश्न पूछना ज्यादा अच्छा लगता है, और शिव जी को क्या अच्छा लगता है, बोलना, भगवान के बारे में बोलना। तो ये पति पत्नी ऐसे होने चाहिए, नहीं कि लड़ाई झगड़े कर रहे दिन रात। क्या करना चाहिए उनको, पत्नी ने हमेशा प्रश्न पूछने चाहिए। किसके बारे में प्रश्न पूछने चाहिए, मायके के बारे में नहीं, ससुराल के बारे में नहीं, मार्केट में क्या चीजें हैं उसके बारे में नहीं, किसके बारे में, भगवान के बारे में। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो बच्चे हैं वो सरेंडर होते हैं अपने मदर को। किसको सरेंडर होते हैं, हाँ अब देखो बच्चों का ज्यादा लगाव किससे होता है, माता से। मदर सरेंडर होनी चाहिए हस्बैंड को, किसको, हाँ पति की एक निष्ठ सेविका। और पति सरेंडर होना चाहिए गुरु को, किसको, और गुरु सरेंडर होना चाहिए कृष्ण को। तो ये लिंक यदि प्रॉपर है तो वो फैमिली लाइफ ग्लोरियस है। फैमिली लाइफ क्या है? ग्लोरियस है, महान है। इस लिंक में कहां रुकावट है तो फैमिली लाइफ में भी क्या है? बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है। इसलिए आवश्यक है इस ट्रेन को मेंटेन करना। इसी को क्या कहते हैं? परंपरा। क्या कहते हैं? परंपरा। तो भगवान के शरणागत होते हैं स्पिरिचुअल मास्टर और वो आगे शिक्षा देते हैं। और जो पत्नी का प्रथम गुरु कौन है? पति है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि हमें शिक्षा लेने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ शिवजी को पार्वती देवी प्रश्न पूछती हैं कि हे पतिदेव, आप, मैं देखती हूँ कि आप हमेशा माला लेकर कुछ करते रहते हैं। जैसे कई बार कोई भक्त नया नया जुड़ता है, पहली बार इस बार मंदिर जाते हैं तो वो गले में टाई नजर नहीं आती। क्या नजर आता है? माला। टाई बाद में दिखती है, टाई की जगह ये ले लेती है, जप माला लटकते रहती है। और शायद वो पहली बार मंदिर गया होगा इस्कॉन टेम्पल, कोई भक्त मिला होगा, उसने कहा माला शुरू करिए। सबसे पहले क्या शुरू करिए? माला करना शुरू करिए। बाद में फिर माला पहनने को मिलेगी आपको। पहले क्या करना होगा? भगवान के नामों का उच्चारण करना सीखना होगा। तो जब इन्होंने देखा कि मेरे पति हमेशा माला लेके एकांत में शिवजी महादेव बैठे रहते हैं, जप करते हैं, और कई सारे लोग उनकी पूजा करते थे, इनको पूछा आपकी इतने सब सब पूजा करते, आप किसकी पूजा करते रहते हो, कौन है आपके आराध्य देव? और दूसरा प्रश्न ये भी पूछा कि मुझे बताइए जगत में सबसे बड़ी आराधना या सेवा या उपासना किसकी है। तो जब उनको ये पूछा तो उन्होंने क्या कहा शिव जी ने? आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। हाँ, कि हे देवी पार्वती, मेरे जो आराधनीय है वो भगवान कृष्ण है या राम है। तो हाँ, महादेव हमेशा इस मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने कहा हे पार्वती देवी, क्योंकि पार्वती देवी विष्णु के सहस्र नामों का जप करती हैं। किसके? विष्णु। पार्वती देवी दुर्गा देवी। आजकल नवरात्र चल रहे हैं ना, तो नवरात्र में किसकी पूजा करते हैं लोग? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी किसके नामों का जप करती है? विष्णु सहस्र नाम। और दुर्गा देवी इतनी पक्की है अपने जप करने में, वो तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते जब तक क्या कंप्लीट ना हो, जब अपना जप कंप्लीट ना हो। तो उसको विष्णु सहस्र नाम जप करने की दीक्षा प्राप्त हुई थी। लेकिन जब घर आई तो देखा कि मेरे पति तो भगवान राम और कृष्ण के नामों का जप कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे शिक्षा ली। तब से पार्वती देवी या दुर्गा देवी कौन से नामों का जप करती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये पार्वती देवी चाहती हैं, पार्वती या दुर्गा देवी चाहती हैं, क्योंकि दुर्गा देवी किसकी सेविका है? भगवान कृष्ण की। इसलिए शास्त्र कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयश भुवनानि विभर्ति दुर्गा, कि कहते हैं इस त्रिभुवन को जो मैनेज करती है वो कौन है? दुर्गा देवी है। उनका नाम दुर्गा इसलिए भी है क्योंकि इस ये जो जगत है भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, ये एक किले के भांति है, फोर्ट, और उसको दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्ग। तो इस दुर्ग की जो रक्षिका है, दुर्ग की जो स्वामिनी है, उसको दुर्गा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और दुर्ग का दूसरा मतलब यह है कि जो बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है, जिसको क्रॉस करना, जिसके परे हो पार जाना। तो इसलिए दुर्गा देवी सरलता से जीवों को इस जगत से बाहर जाने नहीं देती क्योंकि सारे उसके कस्टडी में है। तो लेकिन वो सबको टॉर्चर करती हैं। क्या करती है? दुर्गा देवी का एक काम है टॉर्चर करना। इसलिए उसके पास त्रिशूल होता है। क्या है उसका अस्त्र? त्रिशूल, जिसमें तीन ये होते हैं लंबे लंबे चीजें। तो वो त्रिशूल वो तीन प्रकार के कष्ट सब जीवों को देती है। और हमेशा पीड़ित करती रहती है। कल एक व्यक्ति मुझे मिलने आया था, बहुत बड़ा उसका प्रिंटिंग प्रेस है और इतनी, और लेकिन इतना स्ट्रगल है लाइफ में। वो मुझे कहता है कि मेरा एक बेटा और बेटी अमेरिका में रह रहे हैं, एक छोटी सी बेटी मेरे साथ रह रही है और हम दोनों पति पत्नी है, लेकिन इतना कष्ट है जीवन में कि मेरे जीवन में मैं अभी देखता हूं कि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बचा मेरे पास कि जिसके पास जाकर मैं अपना हृदय खोल के बात कर सकूं। वो कहते हैं ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति इस भौतिक जगत के कष्टों से व्याप्त है और दुर्गा देवी क्या कर रही है, सबको इस प्रकार से ताड़ित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है सब लोग कृष्ण की सेवा करें। किसकी? हाँ, इसलिए हनुमान जी कभी नहीं चाहते कि सारी जनता जनार्दन वो सिंदूर या रेड कुमकुम लेके जाए और उनको लगाते रहे मंगलवार और शनिवार शायद। तो हनुमान जी क्या चाहते हैं, किसकी सेवा में लगे सब लोग? राम की सेवा में लगे। ये चीजें हमें सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो इस प्रकार से शिवजी भी उसी चीज की शिक्षा प्रदान करते हैं कि आराधनाओं में श्रेष्ठ आराधना परम भगवान कृष्ण की है। इसलिए भगवान ने बोला कि माम एकम शरणम रज, मेरी एकमात्र शरण ग्रहण करो और शरण ग्रहण करने योग्य दूसरा कोई नहीं है। जब रामायण में युद्ध हो रहा था हनुमान ये रावण और राम का, तब रावण किसका भक्त था? शिवजी की सेवा कर रहा था। यहाँ पार्वती कहते हैं आपका भक्त का विनाश हो रहा है, उसको बचाइए। शिवजी कहते हैं क्या कहा शिवजी ने? नहीं, वो मेरे प्रभु के साथ युद्ध कर रहा है। हाँ, उन्होंने कहा यह असंभव है, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। शिवजी कहते हैं राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करना चाहेंगे उसको इस संसार में कोई मार नहीं सकता, और जिसको कृष्ण ने सोचा इसको मृत्यु निश्चित है उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। जयद्रथ के बारे में हम देखते हैं महाभारत में। जयद्रथ जिसको सारी सेना उसकी रक्षा कर रही थी, जिसने अभिमन्यु का वध आदि किया था मिलकर सबने, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि सूर्यास्त होने के पहले मैं क्या करूंगा, जयद्रथ को मारूंगा, अन्यथा मैं अपने शरीर देह का त्याग करूंगा, अग्नि में आहुति कर डालकर। तो भगवान ने देखा कि इतनी सारी सेना और कौरवों ने जयद्रथ को छुपा के रखकर उसको 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 उसकी रक्षा कर रहे थे, और भगवान तो अर्जुन के सारथी बने थे। भगवान सबसे अधिक, मैंने शुरुआत में कहा क्या है, चतुर है। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने वचनों को भी तोड़ते हैं। जब जयद्रथ की बहुत रक्षा हो रही थी और अर्जुन देख रहा था कि समय तो खत्म हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, और कौरव यही चाहते थे कि सूर्यास्त हो और बिना युद्ध के अर्जुन को देह त्याग करना पड़े, है ना। तो उस प्रकार से भगवान ने योजना बनाई, सूर्य को किससे ढक दिया, बादलों से। दोपहर का ही समय था, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था, भगवान ने बादलों को से ढक दिया और सारी कौरव सेना सोचने लगी, बड़े बड़े योद्धा आदि सोचने लगे कि अभी तो सूर्यास्त हो गया है। और फिर उन्होंने जयद्रथ को सामने प्रकट कराया और हंस रहे थे और सोच रहे थे कि वाह वाह वाह, बिना लड़ाई झगड़े किए आज अर्जुन को मरना पड़ेगा। तो उस समय जयद्रथ को सामने किया तो भगवान ने क्या किया, बादलों को हटा दिया। भगवान कहते हैं वातो भयति मद भयात्, कृष्ण कहते ये जो हवा है मेरे भय से भयती है, सूर्य मेरे भय से रोज उदित होता है और अस्त होता है, समंदर मेरे भय से अपनी सीमा को लांघ नहीं सकता। किसके कंट्रोल में है? कृष्ण। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं मया देक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये जो मटेरियल नेचर है, भौतिक प्रकृति है, वो मेरे कंट्रोल में है। भगवान के अधीन है ये भौतिक एनर्जी। तो जब भगवान ने कहा हे अर्जुन दुखी होने का काम नहीं है, देखो यहाँ क्या है, सूर्य है और यहाँ जयद्रथ है, तो अर्जुन तो आनंदित हो उठा, अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष निकाला और उसका वध कर डाला। तो मतलब शास्त्र कहते हैं कृष्ण यदि चाहे किसी को मारने के लिए, तो इस संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसको बचा सकती है, और कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहे तो संसार में कोई भी शक्ति नहीं जिसको मार सके। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण वास्तव में शरण देने योग्य है, इसलिए तो ये इतना उनका बड़ा हृदय है। जब भगवान राम उस लंका को सी को पार सी पार करने से पहले वहां थे, तो विभीषण उनको मिलने आता है, तो सारे ये जो वानर सेना और बड़े बड़े जो उनके प्रमुख थे राम की सेना के, उन्होंने कहा ये तो असुर है, ये तो बहाना बना के आपके पास आया है। तो भगवान कहते नहीं, वो शरणागत होकर मेरे पास आया है जो विभीषण है, और मेरा मैं ये मेरा ये गुण है कि जो भी मेरी शरण ग्रहण करता है उसको मैं अपना सर्वस्व अर्पित करता हूँ। इतना बड़ा गुण कृष्ण का है। अब सोचो कोई बच्चा अपने माता पिता की शरण ग्रहण करता है, जो कहते वैसे आचरण करता है, तो माता पिता का हृदय भर उठता है और उनको लगता है कि क्या क्या करो मेरे अपने बच्चों के लिए, लगता है कि नहीं हमें अपने हृदय में। तो भगवान कहते जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है मैं अपने आप को उसको समर्पित करता हूँ, और इतना ही नहीं जो अंगद और सुग्रीव आदि थे तो उन्होंने कहा कि ये तो शत्रु है। भगवान कहते इवान ये रावण भी आ जाए अभी और मेरी शरण ग्रहण करे, तो मैं वो कहे कि मुझे अयोध्या दे दो तो मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा उसको। किसने कहा? भगवान राम ने। इतना बड़ा हृदय भगवान की, केवल शरणागत होने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जीवन बचपन से लेकर अंत तक हम किसी ना किसी की शरण ग्रहण कर रहे हैं, और हम भूल रहे हैं कि मेरे वास्तविक जीवन का लक्ष्य है कि भगवान की शरण ग्रहण करना। इस संसार में कोई भी व्यक्ति शरण देने योग्य नहीं है, हाँ, तो इसलिए हम अपने जीवन में हर समय अलग अलग बॉस ढूंढते हैं। अपने लाइफ में क्या ढूंढते हैं? अलग अलग बॉस ढूंढते हैं। हमारा ये स्वभाव है किसी के शेल्टर में रहना। क्या स्वभाव है? किसी के शेल्टर में रहना। तो बेस्ट शेल्टर है भगवान कृष्ण की, जो शेल्टर देने योग्य है। इसलिए अर्जुन अपने जीवन में किसी को चूज करता है जो इतना बड़ा फाइटर था, इतनी बड़ी योग्यता अर्जुन में थी। क्या 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 कारण है अर्जुन को इतने इतने सारे भगवद गीता का उपदेश देने की? भगवान कहते हैं भक्तों सी में सखा चेति रहस्यम है तदुत्तमम, कि अर्जुन ये भगवत भक्ति का रहस्य मैं तुम्हें दे रहा हूं। और अर्जुन के पास दोनों प्रकार की योग्यताएं थी, भौतिक और आध्यात्मिक, और तीसरी थी वो भगवान के भक्त थे। भौतिक योग्यता क्या थी? अब देखो वो कितने बड़े धनुर्धर थे। जब इन सबके पांडव और कौरवों के एग्जाम हो रहा था, हाँ, तो पेड़ इधर भी बहुत सारे पेड़ हैं, तो द्रोणाचार्य सबको लेके आए, भीम को कहा धनुष उठाओ, भीम तो गदा उठाने की आदत है, उन्होंने क्या उठा ली? धनुष उठा लिया। भीम क्या दिखाई दे रहा है वहां? कहते हैं मुझे पेड़ और पेड़ के पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, रखो धनुष क्या करो नीचे रखो। फिर सबको बुलाया, किसी ने कहा मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा पंछ दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्जुन को जब बुलाया तो उसने क्या कहा? मुझे केवल आंख नजर आ रही है और कुछ नहीं। एक भक्त का लक्षण है एक एकाग्रता भगवत सेवा में, उसको जीवन में भगवान की सेवा नजर आती है। और बाकी जगहों में भी हम देखते हैं ये द्रोणाचार्य क्या करते थे, अपने जो पुत्र हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र कौन थे? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को क्रैश कोर्स कराते थे बीच बीच में, शॉर्टकट। जब इन सबको घड़ा देते थे जिसमें छेद था, कौरव पांडव घड़ा लेकर वो जल लाने के लिए जाते थे, और अश्वत्थामा भी जल ले आते थे लेकिन बहुत क्विकली, और ये लोग और घड़ा भर के लाना है, कभी कैसे ला सकते हो, वो तो गिरता रहता है पानी। तो अर्जुन इतने पावरफुल थे कि अर्जुन ने क्या किया, वहां ही बाण मार के जो जल वहां से सीधा घड़ा यहाँ ही था, घड़े में आता था, वो गिरता भी था तो घड़ा भरा रहता था। और उन्होंने कहा आप प्राइवेट क्लास किसकी लेते हो, अपने पुत्र अश्वत्थामा की लेते हो, मुझे भी क्या चाहिए, वो प्राइवेट क्लास चाहिए। जैसे बच्चों को भेजते ना ट्यूशन में भेजते हैं, द्रोणाचार्य अपने बेटे का ट्यूशन लेते थे अकेले, बाकी किसी का नहीं, लेकिन अर्जुन इतने एक्सपर्ट थे वो भी उसमें भाग लिए। और तीसरे समय भी हम देखते हैं जब द्रोणाचार्य का पांव मगरमच्छ ने पकड़ा था तो उसका वध किसने किया था, अर्जुन ने ही। और जब इन सबने पढ़ाई की गुड़गांव, द्रोणाचार्य का गांव कौन सा था पहले, ये गुड़गांव जो इसका नाम था गुरुग्राम, क्या था, गुरु का ग्राम, अभी वो गुड़गांव इतना बड़ा सिटी बन गया है, जहां पांडवाज कौरवाज ये द्रोणाचार्य के यहाँ सीखा करते थे। तो ऐसे जब इनकी शिक्षा की पूर्ति हुई तब उनको पूछा सबने कि आपको क्या दक्षिणा दे गुरुदेव, तो द्रोणाचार्य ने कहा मेरी दक्षिणा तो यही है कि द्रुपद को बांध के ले आओ। द्रुपद को किसको, हाँ द्रुपद और द्रोणाचार्य बहुत बड़े मित्र थे, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे, बहुत करीब के मित्र। लेकिन ये जब बड़े हो गए और दोनों का विवाह हुआ, द्रुपद तो राजा बना और ये क्या थे, एक ब्राह्मण थे। इनका जब विवाह हुआ तो इनके पास कुछ धन आदि नहीं था, इनका बेटा जब छोटा ही था अश्वत्थामा, तो घर में तो दूध नहीं था, तो माता क्या करते थे, आटे में पानी मिलाकर अश्वत्थामा को पिलाया करते थे। अश्वत्थामा कहते था मैं तो दूध पी रहा हूँ रोज, तो बच्चों के साथ खेलते खेलते उन्होंने कहा दूध नहीं, तुम क्या पीते हो, आटे का पानी पीते हो। तो सही में फिर उसको पता चला, तो पत्नी ने कहा आपके इतने बड़े मित्र हैं द्रुपद, उनसे गाय को दान में मांग लो। इन्होंने सोचा चलो इतने बड़े मित्र हैं उनको अप्रोच करता हूँ। तो द्रोणाचार्य जब गए, द्रुपद ने कहा मैत्री तो बराबर वालों से होती है, किनसे होती है, बराबर वालों से होती है, मैं आपके बराबरी का नहीं हूं। तो घमंड था, व्यक्ति के पास धन सौंदर्य पोजीशन और ज्ञान आता है तो व्यक्ति क्या होता है, घमंडित होता है और उसके विनाश का कारण है चार चीजें, कुंती ने कहा। तो उन्होंने कहा द्रोणाचार्य ने कि फिर आपको मैं पाठ पढ़ाऊंगा। तो फिर दुर्योधन आदि को भेजा, ये कौरव बड़े उत्साह से गए लेकिन द्रौपदी ने उनको बांध दिया, हरा दिया। लेकिन जब अर्जुन गया इतना शक्तिशाली, द्रुपद को बांध के लेके आया किसके सामने, द्रोणाचार्य, इतना बड़ा योग्यता उसमें था और चरित्र भी अमेजिंग था। हाँ जब स्वर्ग में वो गए युद्ध से पहले अर्जुन, तो वहां सारी अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी और अर्जुन उर्वशी की ओर बार बार देखते जा रहे थे। तो इंद्र को लगा रहे अर्जुन को उर्वशी बहुत प्रिय लग रही है, तो उसने सोचा इंद्र ने कि मैं अर्जुन के पास उर्वशी को भेजता हूँ उसका उपभोग करने के लिए। तो जब इंद्र ने उर्वशी को भेजा अर्जुन के पास, तो अर्जुन उसको प्रणाम करने लगे और उन्होंने कहा कि आप मेरी ग्रैंड मदर हो। क्या कहा, हे माता ग्रैंड मदर, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। उर्वशी को बड़ा क्रोध आया, अरे क्योंकि उनके वंश में एक राजा हुए थे पुरुरवा, उनकी पत्नी थी उर्वशी, हाँ पुरुरवा की पत्नी बनी थी उनके पूर्वज जो हुए थे अर्जुन के। इस प्रकार से हम देखते हैं उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो भौतिक योग्यता है, और इतना ही नहीं उनका बहुत बड़ा भक्ति था। जब महाभारत का युद्ध होता था तो संध्या के समय में अर्जुन के शरीर में घाव होते थे, हाँ घाव होते हैं ना लड़ाई में, तो अर्जुन आके जब बेड में लेटे होते थे तो वो एक प्रकार से कहराते थे, दुखी दुख होता था। तो भगवान कृष्णा रात्रि के समय भगवान सोते नहीं थे, क्या सेवा करते थे, घोड़ों को ठीक करना और अर्जुन का देखभाल करना। जाते थे अर्जुन का टेंट फाड़ कर अंदर घुसते थे, अर्जुन के घावों को देखकर अर्जुन अपने हाथों का स्पर्श करते थे घाव पर, जैसे स्पर्श करते थे उसके घाव क्या होते थे, ठीक हो जाते थे। और एक दिन किसने देखा, ये भीम और युधिष्ठिर आदि ने, उन्होंने कहा ये क्या है, उनका अकेले के घाव ठीक करते हो आप, हमारे घाव ठीक नहीं क्यों करते। तो भगवान ने कहा आओ भीम इधर आओ, आपके कान लगाओ अर्जुन के शरीर पर। तो अर्जुन का हर एक जो रोम है, जो रोम कूप है या घाव है, वो किसके नामों का उच्चारण कर रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्वालिफिकेशन था अर्जुन के पास, हाँ, कि अर्जुन का हर रोम, शरीर का हर अंग, हर घाव कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहा था। ऐसा डिवोशन अर्जुन के हृदय में था, इसी कारण ने से भगवान ने उनको चूज किया। कोई ऐसे कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं था, इतना क्वालिफाइड व्यक्ति अर्जुन, जिसको किस चीज की आवश्यकता पड़ी, भगवत गीता की। इसलिए भगवत गीता बुद्धिमान व्यक्ति के लिए है, और बुद्धिमान कौन है, जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, जिसके हृदय में भगवान को समझने की श्रद्धा है, या भगवान की सेवा करने के लिए जो श्रद्धावान है, वो भगवत गीता को समझने का अधिकारी है। तो इस कारण से अर्जुन उनसे शिक्षा लेते हैं। और इस दूसरे अध्याय में विशेष रूप से इन श्लोकों में अर्जुन भगवान से कुछ विशेष चीजें जानना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले आत्मा के बारे में शिक्षा दी, बहुत डिटेल, कि आप ये बॉडी नहीं हो, जो मल मूत्र हड्डी मांस ब्लड गंदगी से पस, इन गंदगी से भरा पड़ा है। वैसे हम अपने बॉडी को ठीक से एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि ये तो एक मल मूत्र का थैला है। क्या है, मल मूत्र का बैग मैं कैरी कर रहा हूं अपने सामने। ये स्किन यदि हटाए तो ये बॉडी अच्छा लगता है क्या हमें, नहीं लगता है अच्छा, नहीं। ये स्किन ऊपर से लेप किया है तो इसलिए बहुत अच्छा बॉडी लगता है। ये स्किन थोड़ा थोड़ा निकालो फिर पता चलेगा असलियत क्या है। और सुबह जब हम उठते हैं सोकर, तो ये बॉडी थोड़ी सुगंध बाहर निकालता है, क्या निकालता है, सारी गंदगी सारा दुर्गंध। इसलिए 9 गेट्स है बॉडी में, कितने होल है, 9। नव द्वारे पूरे देही, गीता कहती है कि 9 गेट्स है इस पूरे शरीर में, जिसमें से सारा गंध ही निकलता है। हाँ, लेकिन इतना गंदी चीज हम कैरी कर रहे हैं, अभिमान क्या है, मैं इतना सौंदर्यवान हूं, मैं इतनी सौंदर्यवती हूं, लेकिन अल्टीमेटली एक गंदगी का थैला है। इसको हम अनुभव करेंगे और जानेंगे कि ये गंदी चीज है, लेकिन ये भगवान की सेवा में लगने से बहुत सुंदर हो जाती है। किसकी सेवा में, हाँ देखो, वो जो कुब्जा है वो चंदन लेके जा रहे थे, किसकी सेवा में लेके जा रहे थे, कंस के, है ना। ये शरीर भी हम कंस जैसे व्यक्तियों की सेवा में लगाते हैं, हम भौतिक कार्यों में। तो जब चंदन लेके जा रहे थे और वृंदावन से कृष्ण और बलराम पहली बार शहर देखने आए थे, सिटी कब देखा भगवान ने, पहली बार 11 साल के थे, वृंदावन को छोड़ा, अक्रूर के साथ गाड़ी में बैठ के नहीं आए, रथ के ऊपर, गाड़ी तो नहीं थी, आजकल की टीन से बनी हुई जो गाड़ियां हैं, पेट्रोल चाहिए। और इतना भी हम आ रहे थे तो कितना ट्रैफिक है दिल्ली में, गाड़ी लेके जाना बहुत कष्ट है, बेटर है मेट्रो से आओ, है ना, नो टेंशन, जब माला हाथ में पकड़ो जब करते हुए आओ। तो जब रथ से आए और उन्होंने बलराम को कहा कि बलराम चलो हम मथुरा शहर घूमते हैं, तो बलराम के साथ वो आए मथुरा और उनके संगीत है। तो रास्ते में उनको एक स्त्री युवती दिखाई दी जो कुब्जा थी, टेढ़ी चल रही थी और हाथ में बड़ा सा चंदन का पात्र था। कृष्ण ने कहा हे युवती हे सौंदर्यवती रुको रुको, क्या कहा भगवान ने, हे सौंदर्यवती रुको, तुम क्या लेके जा रही हो और किसके लिए लेके जा रही हो। तो उन्होंने कहा मैं चंदन लेके जा रही हूँ और ये चंदन विशेष चंदन है जो कंस को मैं अर्पित करती हूँ हर रोज। तो उन्होंने कहा जैसे कृष्ण और बलराम को देखा, उस कुब्जा ने सोचा कि ये चंदन कंस के योग्य नहीं है, ये चंदन तो ये सौंदर्यवान जो दो युवक हैं कृष्ण और बलराम, इनके लिए तुरंत जैसे आपके माथे में लगाए ना चंदन, अभी यहाँ सबके माथे में, वैसे कुब्जा ने क्या किया, चंदन भगवान के सर 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 में वगैरह लगाया, कृष्ण आनंदित हुए छोटी सी सेवा से। और उसको क्या किया भगवान ने, हाँ देखा ये टेढ़ी है, मेरी सेवा करने से सरल हो जाता है व्यक्ति, क्या हो जाता है, हाँ सारे अनर्थ हृदय की गंदगी निकलती है, क्लीन हो जाता है हमारा हृदय, चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान ने अपना अंगूठा उसके पैर के ऊपर रखा, उसके अंगूठे पर, और उसकी टूटी है ऐसी नीचे हो गई थी, क्या ऐसा हाथ लगाया ऐसे ऊपर गया, उसको सीधा हो गई और देखा इतना अमेजिंग है युवती, ये तो बहुत सुंदर है, सारा सारे मथुरा वासी चकित हो जाते हैं उसको देखने मात्र से। इस प्रकार से कृष्ण की सेवा में कुब्जा का शरीर लगा तो महान महान हो गई। वैसे प्रभुपाद कहा करते थे, ये गंदी चीज बॉडी हम कैरी कर रहे हैं, लेकिन इसको भगवान की सेवा में लगने से ये बहुत बड़ा लाभ हमें प्रदान कर सकती है। इस प्रकार से भगवान आत्मा की शिक्षा देते हैं। और फिर भगवान आज का जो श्लोक है उससे पहले भगवान बताते हैं कि व्यक्ति को ये होना चाहिए, समाधा वचलः बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए, स्थिर प्रज्ञ। तो जब भगवान इस चीज की वर्णन इस चीज का वर्णन करते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है, जो वेदों की अलंकारिक भाषा से विचलित नहीं होता, जैसे वेदों में कहा है कर्म कांड करो, ये यज्ञ करोगे तो आपको स्वर्ग में जाने को मिलेगा, ये पुण्य करोगे तो आपकी धन वृद्धि होगी, नहीं लोग पंडित जी यही तो बोलते हैं लोगों को, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देते लोगों को, क्या चाहिए धार्मिक कार्य मतलब कुछ करो उसके बदले में हमें कुछ गेन होना चाहिए, ये नहीं, कुछ धार्मिक कार्य का मतलब है भगवान की सेवा और उसके बदले में क्या अधिक भगवान की सेवा, क्या अधिक भगवान की सेवा। जैसे प्रभुपाद को किसी ने पूछा, स्वामी जी ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का गोल क्या है, उन्होंने कहा क्या प्राप्त करेंगे हम, तो प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र और जप करने की इच्छा को प्राप्त करेंगे, हाँ मोर चांद मोर। तो उसी प्रकार से भक्त अपने सेवा के बदले में भगवान से कोई आकांक्षा नहीं करता, वो कहता मैं व्यापारी थोड़ी हूं, बिजनेस में व्यक्ति क्या करता है लेन देन में कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन भक्त भगवान की केवल अनन्य भावना से सेवा करना चाहता है। तो जो किसी वस्तु की जो पहचान है उसके लक्षणों से की जाती है, इसलिए जब भगवान ने एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का वर्णन किया अर्जुन को, तो भगवान ने अपना क्लास में हाथ ऊपर किया, क्या किया भगवान, रुको रुको अभी एक प्रश्न है बीच में, क्या है, तो उन्होंने पिछले श्लोक में एक प्रश्न पूछा, आपने इतने सारा वर्णन किया एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का, मेरे अभी चार प्रश्न है, एक प्रश्न नहीं कितने चार, उस व्यक्ति के बारे में मैं पूछना चाहता हूं जो स्थिर मति का है, स्थिर बुद्धि का है। तो 54 जो अध्याय है उसमें भगवान ने चार प्रश्न पूछे, यदि आप देखते हैं वो श्लोक, हाँ श्लोक नंबर 54 जिसमें भगवान चार प्रश्न पूछते हैं, और ये चार प्रश्न एक भक्त के सारे आचरण के बारे में वर्णित किए गए हैं, जिसमें भगवान को कहते हैं, पहला प्रश्न वो पूछते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उस व्यक्ति की भाषा कौन सी है, भाषा कौन सी मतलब उसका व्यवहार कैसे है, सर्वसाधारण व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, या क्योंकि भाषा से क्या करते हैं हम कन्वे करते हैं ना मैसेज, तो उसी प्रकार से वो पूछते हैं उसका आचरण किस प्रकार से है, उसका मतलब उसके जीवन में सुख दुख आता है तो वो किस प्रकार से अनुभव करता है उन चीजों को। फिर दूसरा प्रश्न उसी श्लोक में पूछते हैं कि किम प्रभाषेत, किम प्रभाषेत, दूसरी लाइन में 54 श्लोक, कि प्रभाषित का मतलब है कि वो किस प्रकार से जो आने वाली चीजें हैं उसके जीवन में या जो भी घटनाएं हैं सिचुएशन है उसके प्रति उसका रिएक्ट किस प्रकार से करता है, उसका क्या रिएक्शन है उन चीजों के प्रति। और फिर आज के जो दो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 56 और 57 है जिसमें उन्होंने कहा आज के श्लोकों में कि वो कैसे बोलता है प्रभाषित। प्रभाषित मतलब उसके जीवन में आने वाली विपदाओं के प्रति वो कैसे रिएक्ट करता है। कोई कष्ट आता है तो उसके अगेंस्ट उसकी क्या एक्शन होती है उसको आज के इन श्लोकों में भगवान वर्णित करते हैं 56 और 57 में। और जो तीसरा प्रश्न था किम आसीत का मतलब वो कैसे बैठता है। फिर भगवान उदाहरण देते हैं, कूर्म का उदाहरण देते हैं और टॉर्टाइस का उदाहरण देते हैं। जब टॉर्टाइस कैसे बैठता है, जब कुछ काम करना है तो अपने सारे अंग बाहर निकालता है, काम नहीं है तो अंदर। तो उसी प्रकार से भक्त भगवान की सेवा के लिए सारी चीजें बाहर कर देता है, अपने अपने सारी योग्यताओं को लगाता है और माया की सेवा के लिए सबको अंदर करता है। और पांचवा चौथा जो प्रश्न है व्रजेत किम, उसका वर्णन पूछते कि वो चलता कैसे है। चलता मतलब जिसका उत्तर भगवान ने 64 श्लोक से लेके 71 इन श्लोकों में उत्तर दिया। चलता का मतलब है कि भगवान अर्जुन पूछ रहा है कि वो अपने इंद्रियों को कैसे एंगेज करता है कृष्ण के सेवा में। तो ये जब प्रश्न पूछे तो भगवान आज के श्लोक में वो कैसे बोलता है वह उसका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहली चीज यह वर्णित की गई है दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा, कि जो भगवान का भक्त है या जो मुनि है वो अपने जीवन में जो दुख आते हैं उससे विचलित नहीं होता, ये उसका गुण है। जिसकी बुद्धि भगवान के चरणों में लगी हुई है, जो भगवान की सेवा में स्थिर हो गया है, उसके जीवन में कष्ट भी आते हैं तो उससे विचलित नहीं होता और सुख भी आता है तो उससे अधिक हर्ष अनुभव नहीं करता। हम जैसे पांडव है, पांडव के जीवन में कष्ट आया भी तो वो क्या देखते हैं उन कष्टों को, भगवान की कृपा। तो हमें भी ऐसे नहीं कि जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, हमेशा जीवन में कष्ट आएंगे किसी ना किसी प्रकार से। शरीर प्रॉब्लम करेगा, मन प्रॉब्लम करेगा, पड़ोसी तंग करेगा, बच्चे परेशान करेंगे या फिर बॉस परेशान करेगा और दूसरे जीव परेशान करेंगे, बहुत गर्मी होगी, बहुत सर्दी होगी, मतलब कष्ट हमेशा लगे हैं। ये जीवन कष्टों से भरा पड़ा है, लेकिन जीवन में जब कष्ट कम होके थोड़े से कष्ट कम होते हैं उसको हम सुख मान लेते हैं। सुख किसको मानते हैं, जब कष्ट थोड़े से कम हो जाते हैं, कष्ट है लेकिन वो थोड़े से कम होते हैं उसको हम क्या मान बैठते हैं, सुख। इसलिए भक्त हमेशा सोचता है कि मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं मेरे अपने कर्मों के कारण बहुत अधिक मिलने वाले थे, लेकिन मुझे भगवान की कृपा से क्या मिले, छोटे। सोचो किसी का एक्सीडेंट होता है और उसमें हाथ कट जाता है तो वो सोचता है कि हम सोचते हैं भगवान ने कराया, इसने कराया, अधिक दोष हमारा है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जो भी हो, जब दुख आते हैं तो दोष किसको देते हैं, भगवान को। जीवन में सुख आता है तो दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं किसके कारण सुखी हो, मेरे कारण, ये हमारी समस्या है। तो दोनों में किसका हाथ देखना चाहिए, भगवान का। और जो भगवान की भक्ति में स्थिर है, जिसकी बुद्धि जहां यह स्थिर प्रज्ञ बोला गया है, मुनि जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर होती है वो इस भावना से सोचता है कष्ट आ रहा है, अधिक मिलने वाला है मेरे जीवन में, लेकिन भगवान की कृपा से कम मिला है और उसको आनंद से स्वीकार करता है। हमारे जीवन में कुछ भी कष्ट नहीं है, कुंती के जीवन में आप देखोगे कष्ट उसकी कोई सीमा नहीं है। कितना कष्ट था कुंती के जीवन में, जिनके पति चले गए थे, 5 पुत्र उनके पास थे और पांडव कौरव आदि हमेशा शत्रुओं की तरह खड़े थे, उनका जीना हराम कर दिया था, जब भगवान महाभारत युद्ध के बाद निकल रहे थे तो कुंती खड़ी हो गई, कृष्ण का हाथ पकड़ा और रोने लगी। कुंती ने कहा आप मत जाइए, आप हस्तिनापुर को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आप जाने से सारी चीजें हमारे जीवन से चली जाती हैं। अच्छा क्या है कि हे कृष्ण विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत्सात अत पुनर्भव दर्शन। वो कहते हैं विपदा संतु, विपदा मतलब कष्ट, हाथ पकड़ के कृष्ण का कह रही है कृष्ण मेरे जीवन में कष्ट आने दो, बार बार कष्ट आने दो, जहां तहां मर्जी जितने भी कष्ट आने दो। कोई पूछेगा ये पागल तो नहीं हो गई, हम सब लोग मंदिर जाते हैं किसके लिए जाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का और मन का भी, कष्ट तन का भी मिले, तन मीन्स बॉडी और मन का भी सुख संपत्ति घर आए। लेकिन यहां कुंती जो सबसे आइडियल स्त्री है, सबसे चरित्रवान स्त्री है, कुंती जैसा कैरेक्टर कहा भी नहीं है। भागवत शुरू होता है सबसे पहले प्रार्थना भागवत ग्रंथ में किसी की दी गई है लिखित, तो वो किसकी है, कुंती की। आप सोचो कितनी ग्रेट लेडी है। कुंती कहती है कि मेरे जीवन में कष्ट आने दो अधिक से अधिक, क्यों, भवतो दर्शन यशात अपुनर्भव दर्शन। जब भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं कृष्ण आप चले आते हो और आपका दर्शन हमें हमेशा होता है, जिसके कारण जितना अधिक आपका दर्शन होगा, जितना अधिक आपके हमसे सेवा होगी, उतनी अधिक इस भौतिक जगत के संसार से हम मुक्त हो जाएंगे। ये इसलिए वो कहते कष्ट आने दो, सुख आएंगे तो हम आपको स्मरण नहीं कर पाते, इसलिए वो एक दुखों का लिस्ट भी बोलती है कृष्ण को, कृष्ण आपने कौन कौन से दुखों से हमें बचाया। वो कहती है विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शनम, मेरे बेटे भीम को विष खिलाया गया था, लाक्षाग्रह से आपने हमें बचाया, और एक जो हिडिंब असुर से भीम आदि हम सबकी रक्षा की, और मेरी जो पुत्र वधु है कौन, द्रौपदी की असत सभा में जिसको निर्वस्त्र किया जा रहा था उसकी आपने रक्षा की, और वनवास में भी कई सारे कष्ट आए, बड़े बड़े रथी महारथी योद्धाओं से मेरे पांचों पुत्रों को आपने बचाया। इस प्रकार से वो कहती है कि आपने हमारी रक्षा की है। तो इस प्रकार से यदि कोई इस एटीट्यूड से भगवान की सेवा करता है, जीवन में आने वाले कष्टों को सहन करते हुए एक निष्ठता से भगवान की सेवा करता रहता है, तो भागवतम कहता है कि वो व्यक्ति भगवान के पास या भगवान के धाम वैकुंठ जाने का अधिकारी है, दूसरा व्यक्ति अधिकारी नहीं है। तो ऐसे नहीं कि भक्ति करेंगे तो कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे जो हमें शुद्ध करने के लिए, लेकिन जब वो कष्ट आते हैं तो भगवान की कृपा हमें देखनी चाहिए उसमें। और जब भक्त के जीवन में भौतिक सुख भी आता है तो अत्यधिक हर्षित नहीं होता, जब सुखमय जीवन आता है तो कहता है कि कृष्ण ने यह सुख मुझे भेजा है ताकि मैं अधिक से अधिक उनकी सेवा बढ़ाऊं, अधिक से अधिक क्या बढ़ाऊं, सेवा। इस एटीट्यूड से दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा, और भगवान कहते हैं वित राग भय क्रोध, वित मतलब मुक्त है तीन चीजों से, राग भय क्रोध। भगवान का भक्त जिसका मन कृष्ण में लगा है, राग मीन्स आसक्ति, भौतिक आसक्ति से वो क्या है, मुक्त है, और भय भौतिक भय से वो मुक्त है, क्रोध क्रोध से वो मुक्त है। तो इस प्रकार के जो लक्षण जिसमें है वो वास्तव में क्या है, भगवान का भक्त है या भगवान में जिसका मन लगा हुआ है, और वो व्यक्ति स्थिर है, उसको इस संसार की कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो हम भगवान को देखना भी नहीं चाहते, हम भक्ति को छोड़ देते हैं, भगवान की सेवा छोड़ देते हैं, भगवान के बारे में सुनना छोड़ देते हैं, भगवान के नामों का जप करना छोड़ देते हैं। अब देखो श्रील प्रभुपाद का जीवन हम यदि देखें, कितना कष्टमय जीवन उन्होंने जिया था। उनके बारे में सोचे तो जब अपने गृहस्थ जीवन में थे, उनका बहुत बड़ा बिजनेस जो था, तो भी वो लोगों ने चोरी कर ली उनके फैक्ट्री वगैरह, सारा लॉस हो गया, एक प्रकार से वो कष्ट आया और दूसरा कष्ट उनके पारिवारिक जो जन थे वो उनकी कोई सहायता नहीं कर रहे थे, पत्नी और बच्चे भी उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। पत्नी तो ऐसी थी जिसने भागवतम को बेच दिया रद्दी में और क्या खरीदा, चाय और बिस्किट, क्या खरीदा, हाँ। और जब घर में कोई कृष्ण कथा का कार्यक्रम होता था स्वयं, तो वो घर के पहले मंजिल में जाके बैठे रहती थी, चाय बिस्कुट खाती थी, कोई भक्ति आदि नहीं, मतलब घर के लोग भी उनके पास नहीं थे, उनकी सेवा में नहीं थे। और इतना ही नहीं, वो भगवान की सेवा में इतने फिक्स थे कि उन्होंने मुंबई गए, मोरारजी देसाई जो एक बहुत धनवान लेडी थी, उसके ऑफिस के बाहर 5 घंटे उसको अलाव नहीं किया प्रभुपाद को अंदर जाने के लिए ऑफिस में उनके लोगों ने। जब वो लेडी शाम को ऑफिस से बाहर आई तो उसने देखा ये स्वामी जी कौन बैठा है सज्जन व्यक्ति, तो उनके सेक्रेटरी ने कहा ये 5 घंटे से ये साधु बैठा है, आपसे मिलना चाहता है। वो श्री जाती है, कहती है स्वामी जी बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी। तो उन्होंने उस श्री ने कहा कि आप मुझे कल मिल सकते हैं। उनको क्या छापना था, भागवतम का 3रा भाग, और अमेरिका जाने के लिए उसे टिकट स्पॉन्सर करने के लिए, याचना करने के लिए आए थे। किसकी सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। ये है स्थिर बुद्धि। प्रहलाद, प्रहलाद के जीवन में कितने कष्ट आए लेकिन वो विचलित हुए भगवान की सेवा से नहीं। तो इसको कहते हैं जिसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ, जो भगवान में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, मन भगवान में लगा हुआ है, तो इस संसार में कोई भी ऐसी बलवान चीज नहीं है जो उसके मन को, उसके हृदय को कृष्ण की सेवा से अलग कर सके। कोई भी चीज नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है। इस प्रकार से प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं कि वहां प्रभुपाद अमेरिका चले जाते हैं और कृष्ण की इतनी अमेजिंग सेवा करते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कष्ट भी आ जाए या सुख भी आ जाए, उसे विचलित नहीं होता। सुदामा, सुदामा के जीवन में सुख आया कि नहीं आया, भगवान ने सारा इतना राज्य उसको अर्पित किया, धन अमाप संपदा, लेकिन उससे वो पागल नहीं हुए, भगवान को भूले नहीं, उससे उन्होंने किसकी सेवा बढ़ाई, भगवान। वो हमेशा याद रखते थे क्वाहम दरिद्र पापीयाम क्वा कृष्ण श्री निकेतना, वो सोचते थे कहां मैं दरिद्र पापी व्यक्ति और कहां लक्ष्मी के पति कृष्ण। मैं जब द्वारका गया उन्होंने मेरा आलिंगन किया, क्या किया, यही चीज सुदामा अपने दिमाग में बैठ के द्वारका से वापस आते थे यही सोच रहे थे। गए तो कुछ मांगा नहीं उन्होंने, बल्कि पत्नी ने क्लास लगा के भेजा था कि जाओ मांगने, किससे मांगने जाओ, कृष्ण से। और वहां गए तो भक्त का नेचर है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है, भूखा रह जाएगा लेकिन भगवान से कुछ याचना नहीं करेगा, लेकिन भगवान तो भक्त के हृदय को जानते हैं। सुदामा अपने लिए नहीं मांग रहा था कुछ, वो पत्नी ने भेजा इसलिए जाना पड़ा था, गए मांगा नहीं उनकी सेवा के अलावा। सुदामा आए तो कृष्ण को इतना आनंद हुआ, कृष्ण ने रुक्मिणी आदि को साइड करके सुदामा का आलिंगन किया, उनको चेयर में बिठाया, उनके चरण धोए, उनको मसाज किया, उनको खिलाया, उनकी रेस्ट भी करवाई, और फिर बात की उनसे क्यों आए हो सुदामा। सुदामा बोल रहे जस्ट आपसे मिलने आया था। और गए भी वापस तो एक ही चीज स्मरण कर रहे थे कि मेरे जैसा पापी व्यक्ति और वो लक्ष्मी के पति, उन्होंने मेरा क्या किया, आलिंगन किया। और जब अपने घर गांव के पास गए, अभी जो पोरबंदर सिटी है वो किसका गांव था, सुदामा का, वहां जब गए तो देखा वो गांव में अभी क्या बना था, एक अमेजिंग सिटी जहां उनकी पत्नी बच्चे सब बड़े बड़े वस्त्र गहने आभूषण से सज्जित उनका स्वागत करने आए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का भक्त जिसका हृदय या बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई है, उसके लक्षणों का वर्णन कैसे बोलता है, रिएक्ट कैसे करता है अपने जीवन की सिचुएशन में, उसका वर्णन इन 2 श्लोकों में भगवान करते हैं अर्जुन को। और प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा में साहसी होता है। साहस, साहस को क्या कहते हैं, करेज, साहसी होता है भगवान की सेवा करने के लिए, बहुत उत्साह और साहसी होता है। जैसे प्रभुपाद 70 साल की आयु में कहां चले गए, अमेरिका, इतना बड़ा साहस कौन कर सकता है। हम अपने फ्लैट से नीचे उतरकर गार्डन में प्रवचन सुनने नहीं आ सकते, है ना, दर्शन करने नहीं जा, हमें साहस नहीं होता। हाँ तो इतना बड़ा साहस, जिनके पास 40 रुपए थे और एक छतरी थी और कुछ नहीं था अमेरिका जाते समय, और कलकत्ता से वो अमेरिका निकले, उनको कोई छोड़ने भी नहीं आया था वहां जहाज के, कलकत्ता में जिन्होंने अपना पूरा जीवन रहे, लेकिन उसी कलकत्ता में जब संन्यास लेके गए उनको रहने के लिए स्थान नहीं था, कोई व्यक्ति उनको छोड़ने के लिए नहीं था। एक बार एक व्यक्ति से मिले थे, वो किसी मिनिस्टर के घर जो बहुत गायक था, उसको रिक्वेस्ट की उसके घर 2 दिन रहे कलकत्ता में, और वही व्यक्ति जिससे नजदीक का संबंध नहीं था, वो अकेला व्यक्ति उनको जल्द जहाज कलकत्ता में उस बंदरगाह में उनको छोड़ने के लिए आया, एक ही व्यक्ति जिससे उनका अधिक परिचय नहीं था, और वो इतना बड़ा साहस अकेले अमेरिका चले निकल पड़े 40 साल की आयु में, और फिर रास्ते में उनको 2 या 3 बार हार्ट अटैक आता है, फिर भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं हाँ कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? यही है भक्त का मतलब है, जो सदैव भगवान की सेवा करना चाहता है, और भगवान उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहा है, मेरी सेवा के लिए, मेरे प्रचार आदि के लिए, मैं उसके लिए क्या करूं। तो इस प्रकार से हम भगवान भक्त के ऋणी हो जाते हैं, और भगवान अपने भक्त को कभी भी नहीं भूलते। तो इस श्लोक के बारे में तो कई चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन सार हाँ यही है कि इस श्लोक में जो भगवान का भक्त है या स्थितधीर मुनि है, वो किस प्रकार से बोलता है, बोल उसका वर्णन इन 2 श्लोकों में करता है, जो 4 प्रश्न हैं उनमें से 1 प्रश्न का उत्तर कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, और कैसे हाउ ही स्पीक कैसे बोलता है, उसका मतलब है कि वो जीवन में जो अलग अलग परिस्थितियां आती है उनके प्रति कैसे रिएक्ट करता है। तो दुख आता है तो वो क्या सोचता है, कृष्ण की कृपा है। सुख आता है तो क्या सोचता है, कृष्ण की कृपा है ताकि उनकी सेवा में अधिक कर सकूं, ये भावना उसकी होती है। और भौतिक आसक्ति भय निडर हो जाता है। हाँ प्रभुपाद अमेरिका चले गए, वहां कोई उनके लिए रहने के लिए स्थान नहीं था, खाने के लिए प्लेस नहीं थी, उन्होंने सोचा जब वो टिकट मांगने के लिए गए कि मुझे विदेश जाने दो, वो सुमति मोरारजी जो इतनी बड़ी धनाढ्य स्त्री थी, जिनके ऑफिस में सेक्रेटरी बहुत लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका जाने के लिए टिकट स्पॉन्सर करो, तो वो उनके मुंह पर कहती है स्वामी जी अमेरिका क्या मरने जा रहे हो, किसके लिए जाना है तुम्हें, मरने के लिए जाना है, बूढ़े हो गया, ऐसे बोला। लेकिन फिर भी वो सीखते नहीं, मैं वहां कृष्ण की सेवा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है इस पाश्चात्य जगत में इस वैदिक संस्कृति को लेके जाओ। तो उन्होंने स्त्री ने देखा इतना कन्विक्शन, उन्होंने कहा ठीक है आपका पासपोर्ट ले आओ, मैं आपको जाने की व्यवस्था करती हूँ। पहली बार उस स्त्री ने किसी उस जो स्वामी भक्ति वेदांत थे उनको स्पॉन्सर किया, अपने जलदूत जहाज से भेजा, और प्रभुपाद ने जाकर इतना बड़ा कार्य किया। तो भगवान अपने भक्त की सेवा को कभी भूलते नहीं है, और भगवान को हम खरीदना चाहते हैं तो धन से नहीं खरीद सकते, अपनी योग्यताओं से भी भगवान को खरीद नहीं सकते। कैसे खरीद सकते हो? सेवा के द्वारा। तो हनुमान जी को जब ये सारे लंका से वापस आए अयोध्या में, तो सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दी जा रही थी, ये सेवा की सारी वानरों ने। तो जब हनुमान को स्टेज के ऊपर बुलाया तो भगवान राम खड़े हो गए, अभी हनुमान को क्या गिफ्ट दूं, इतनी बड़ी हनुमान की जैसी सेवा किसने की है क्या, नहीं इतनी बड़ी सेवा की है। तो उन्होंने सोचा क्या गिफ्ट दूं, तो भगवान राम ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके भगवान श्री राम त्रिभुवन के बारे में सोचने लगे, पूरे ब्रह्मांड के बारे में कि क्या वस्तु है सत्य बेस्ट जो मैं हनुमान को गिफ्ट दे सकता हूँ। तो हनुमान ने सब भगवान राम ने सब वस्तुओं के बारे में सोचा, लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु जो इनको गिफ्ट में दे सकते हैं उनको नहीं मिली। भगवान राम की आंखों में आंसू आए, हनुमान के नजदीक जाते हैं, हनुमान को कहते हैं हनुमान आपकी सेवा के बदले में मेरे पास देने योग्य कोई नहीं, कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, अपना प्रेम भरा आलिंगन बस। देखते ना फोटो, कुछ फोटो, मैं छोटा था तो घर में ये फोटो लगा रहता था, तो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि आलिंगन क्यों कर रहे भगवान राम। कुछ साल पहले मैंने जब पढ़ा तो पता चला कि आलिंगन वो आलिंगन है हनुमान को जो राम ने किया, कौन सा, उनकी सेवा के बदले उनके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, अमूल्य वो आलिंगन, प्रेम भरा आलिंगन जब किया तो हनुमान और राम दोनों गदगद हो जाते हैं। मतलब भगवान अपने आप को देते हैं। तो इसलिए हमें जीवन में कुछ बनने का प्रयास करना चाहिए तो भगवान का सेवक कैसे बनो, है ना, उसमें सारी चीजें मिली थी। इसलिए सेवक बनना मतलब सेवा करना, है ना, क्या करना, नहीं तो कई लोग इधर टाइटल लगाते सेवक, हाँ होता है ना कुछ फंक्शंस में सेवक, सेवा करना। सेवा कैसे शुरू होती है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अधः। सबसे पहले सबसे उत्कृष्ट सेवा भगवान के नामों का उच्चारण करना, कभी भी नहीं भूलना इस सेवा को, भगवान के नामों का उच्चारण रोज हमें करना चाहिए। और किस पर करना चाहिए, माला के ऊपर, किसके ऊपर, हाँ इसलिए बहुत आवश्यक है। कई बार हम कहते हैं कि भगवान का फोन नंबर है, जैसे कितनी बार रिंग बज रही है लोगों की, घंटी सबकी बज रही है जीवन में, नहीं माया देवी घंटी सबकी बजा के कष्ट दे रही है, तो भगवान का भी फोन नंबर है, 16 डिजिट है, यहाँ कितने डिजिट है 10, भगवान का नंबर कितना डिजिट का है, क्योंकि बहुत दूर है, ISD यहाँ हो सकता है जगत में, लेकिन वो कुछ और है, ISD, STD से ऊपर है, तो 16 डिजिट नंबर है, और उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये संसार में भी हमें मोबाइल के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट, मतलब फोन लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्या है, कौन सा ब्रांड है, तुलसी ब्रांड, कौन सा, हम एप्पल, नोकिया, कुछ कुछ ब्रांड यूज करते हैं, शाम संग, कौन सा संग, शाम का संग, शाम संग, सैमसंग यूज करते हैं, तो अलग अलग ब्रांड है, तो यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट किसी ब्रांड का रखना है तो कौन सा रखना है, तुलसी ब्रांड, किसके पास है तुलसी ब्रांड, सबके पास है, तो तुलसी ब्रांड का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। और आजकल मोबाइल के लिए कवर्स भी आ गए हैं, है कि नहीं, तो इसके लिए भी क्या है, अलग अलग कलर के कवर है, तो हम लोग तो सैफ्रॉन कलर यूज करते हैं, है ना, तो अलग अलग कवर्स भी आप यूज कर सकते हैं। और फिर क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और लाइन कभी एंगेज नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं कि आपको होल्ड में रखा गया है, कृष्ण किसी को होल्ड में नहीं रखते, हमेशा अवेलेबल है, लेकिन हमें क्या करना होगा, लाउडली बोलना होगा, दोनों हाथ ऊपर कीजिए और जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण निश्चित रूप से आंसर देंगे, कोई बिल पे करने की आवश्यकता नहीं है, और बेटर होता है, जैसे कहते हैं लोग सुबह सुबह लाइंस बिजी नहीं होती, वैसे ही कृष्ण को फोन लगाने का बेस्ट समय कौन सा होता है, सुबह का समय है, जल्दी उठो, सुबह फोन लगाओ, कितने भी घंटे लगा सकते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः आप सबका धन्यवाद, और आप स्वयं भी आते रहिए, और आपके साथ और एक एक व्यक्ति को क्या करिए, इंस्पायर करिए प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। भगवान को प्रिय बनने का शॉर्टकट है कि किसी ना किसी जीव को भगवान से जोड़ दो, क्या करो, जोड़ दो, ये सीक्रेट है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या समीक्षा, लेट हो गए, मैंने 15 मिनट लेट करवाया आप सबको, नहीं तो फिर हम 5 मिनट स्टैंडिंग कीर्तन करें खड़े होकर। तो हमारे प्रभु जी और माता जी यहाँ हैं, उनका परिचय देता हूँ। प्रभु जी हैं हिज ग्रेस राधारास बिहारी प्रभु, मॉरिशस से हैं और दिल्ली टेम्पल में बहुत सालों से हैं, जब से मैं आया हूँ तब से हैं, मॉरिशस, हाँ। और माता जी का परिचय,
माता जी हैं गौरांगी देवीदास सिंह, वैसे रशिया से हैं प्रजान सिंह, और वृंदावन में बहुत सालों से रहते हैं अपने माता के साथ। बांसुरी बजाती हैं, तबला बजाती हैं, मृदंगा, हारमोनियम, कथक डांस करते हैं और गाते भी हैं। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण। तो हम इन दोनों का स्वागत करेंगे जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अमेजिंग कीर्तन करते दोनों ही, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि जब भी फ्री होंगे वो सैटरडे और संडे दोनों प्रोग्राम्स में आया करेंगे। हरी बोल। तो आप खड़े होकर थोड़ा कीर्तन करते 5 मिनट।